परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का, जो इसराइलियों द्वारा सिने पर्वत से आरंभ की यात्रा को कनान की सीमा मुआब के मैदान तक की यात्रा से जोड़ती है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी कुशल से हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने गिनती की पुस्तक उसके 11 अध्याय उसके 4 पद तक अध्ययन किया और इसमें हमने देखा था कि इसराइली लोग किस रीति से अपने बीच में मिश्रित लोगों के साथ अनबन होकर के शिकायत करने लगे और परमेश्वर की उपस्थिति को वे अप्रिय जानने लगे और इसकी वजह से कई समस्याएं भी आई। आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि अब यहाँ वे जंगल में हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए था? उनकी जरा सुनिए कि वे क्या कहते हैं। गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसके 5 और 6 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मित्रों, ध्यान दें, उन्हें किन चीजों की याद आती थी? प्रत्येक वस्तु जो उन्हें पसंद थी, मछली के अलावा अन्य सभी मसाले उनके पास थे। निर्जन प्रदेश में मछली नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि वहां कोई झील अर्थात पोखरे नहीं थे। मिस्र की मछलियां उन्हें याद आती थी, वहां खूब मछली मिलती थी। मेरे विचार से वे उन्हें खा खा कर छक गए थे, परंतु अब केवल बात यहाँ पर यह है कि वे याद ही कर सकते थे। केवल चाहत और लालच की पिपासा ही उनके पास थी। मित्रों, इसराइली लोगों के पास शिकायतों का ढेर था और मिली जुली भीड़ के साथ मिलकर वे भी शिकायत करने और यहाँ तक कि यह संक्रामक रोग की तरह फैलकर संपूर्ण शिविर में छा गया और थोड़े ही समय में संपूर्ण भीड़ रोती विलाप करती और मिस्र को याद करती रही। अब वे मन्ना के प्रति भी कुड़कुड़ाने लगे। उनके पास खाने के लिए मन्ना था जो ईश्वर द्वारा प्रतिदिन आश्चर्यजनक रूप से उन्हें दिया जाता था, परंतु यह उनको अच्छा नहीं लगने लगा। हम गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसके 7 से 9 पद में आगे पढ़ते हैं, मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते व ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए का सा था। और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। मित्रों, ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का आत्मा मन्ना की चर्चा हमारे लिए दोबारा करता है। वह वस्तु जो उन्हें नापसंद थी कैसी आश्चर्यजनक बात थी। यह कोई नीरस भोजन नहीं था। सच बात तो यह है कि जैसा हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पढ़ेंगे कि यद्यपि वे जंगल में पैदल चलते थे पर उनके पैर नहीं सूजे। मन्ना खाने से उन्हें बेरी बेरी का रोग भी नहीं हुआ क्योंकि मन्ना में सभी विटामिन मौजूद थे। यह परमेश्वर का भोजन था, उससे उन्हें पूर्ण पोषाहार प्राप्त था। मित्रों, निसंदेह मन्ना प्रभु यीशु मसीह का भव्य और सुंदर चित्र है और परमेश्वर का वचन जो उसे प्रकट करता है। मन्ना कई प्रकार से तैयार किया जा सकता था। इसे भूंजा या तला जा सकता था, उसे पीस सकते थे अथवा गूंथ कर रोटी भी बनाई जा सकती थी। संभवतः श्रीमती मूसा ने एक खाना पकाने की पुस्तक भी बना ली होगी, अर्थात मन्ना पकाने की 100 से अधिक विधियां जो प्रकाशित की गई होगी। परमेश्वर की आत्मा का कथन है कि यह एक संपूर्ण भोजन था, आश्चर्यजनक और पौष्टिक, परंतु इसराइली लोगों को यह भोजन बिल्कुल पसंद नहीं आने लगा। अब हम बैठकर यह न कहने लगे कि इसराइली कैसे भयंकर लोग थे। मेरे मित्र, आपके बारे में क्या है। मन्ना यीशु मसीह का प्रतीक है। आप उसके विषय कैसा महसूस करते हैं? क्या आप उससे थक गए हैं? बहुत से मसीही मन्ना से ऊब जाते हैं। अधिकतर लोग बाइबल अध्ययन से थकान महसूस करते हैं। मेरे विचार से यह कहना कि चर्च के अधिकतर लोग बाइबल अध्ययन पसंद नहीं करते तो यह उचित नहीं होगी। उसके लिए वे कभी नहीं जाएंगे। कलीसिया की वर्तमान दुर्दशा का कारण यह है कि लोग वचन से विमुख होकर किन्हीं और वस्तुओं से अपना पेट भर रहे हैं, है कि नहीं? जी हाँ, उस मन्ना से जो परमेश्वर ने उपलब्ध कराया है। आइए अब हम देखते हैं मूसा की शिकायत। इसके बाद तो मूसा भी इस भीड़ से थोड़ा थोड़ा थक सा गया और मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे भी उससे हमदर्दी अर्थात सहानुभूति है। आइए हम गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसके 10 से 15 पद को पढ़ें। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? क्या ये सब लोग मेरे ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। मुझे इतना मांस कहां से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये तो यह कह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊं। मित्रों, क्या मूसा शिकायत कर रहा है? मुझे यहाँ ऐसा ही प्रतीत होता है कि वह शिकायत कर रहा है। मूसा किसी भी प्रकार एक सिद्ध पुरुष नहीं था। वह एक साधारण मानव था जिसे परमेश्वर ने प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया। मूसा ने कहा कि इस प्रकार भीड़ के वर्ताव सहने की अपेक्षा उसे मर जाना ही पसंद होगा। मित्रों, मैं ऐसे सेवकों को जानता हूँ जिन्हें फोड़े व मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा। मैं कई ऐसे लोगों से भी परिचित हूँ जिन्हें सेवकाई छोड़नी पड़ी। उन्होंने वही किया जो मूसा ने किया, प्रभु से शिकायत की कि उनका बोझ असहनीय था। वे शिकायतें व आलोचनाएं सुनते सुनते थक गए थे। मित्रों, अब हम आगे पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसके 16 पद में। यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। परमेश्वर से इस प्रकार की शिकायत करके मूसा ने गलती की। मूसा ने कहा कि वह इतने सारे लोगों का बोझ ढो रहा है, पर ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने कभी उससे ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ही केवल इस बोझ को ढो रहा है और साथ में मूसा का भी। परंतु मूसा अपने आप को पूर्णतया परमेश्वर को नहीं सौंप रहा था। अब परमेश्वर ने कहा, ठीक है मूसा, मैं तुझे मदद दूंगा यदि तुझे इसकी आवश्यकता है। परमेश्वर बड़े धैर्य से कोमलता और शालीनता पूर्वक मूसा को सहायक प्रदान करता है। 70 प्रचीन नियुक्त किए गए। मित्रों, सामान्य रूप से ये 70 पुरनिय इसराइल के इतिहास में लगातार बने रहे। हमारे प्रभु के दिनों में इसको सिनहेंद्रिन सभा कहा जाता है, जिन्होंने एक दिन यीशु को क्रूस की मृत्यु देने का निर्णय किया। मेरा मत है कि उन्हें इस प्रकार की संगठन की कोई जरूरत नहीं थी। मित्रों, हम अक्सर वर्तमान कलीसियाओं में सोचते हैं कि यदि कमेटी संगठन पद्धति बढ़ाए तो हमारे अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा, परंतु इससे समस्या सुधरती नहीं है। हमें अधिकतर संगठन की जरूरत नहीं है और न ही सिनहेद्रिन सभा की भी। आइए हम गिनती 11 अध्याय उसके 17 पद को पढ़ें। लिखा है, तब मैं उतर कर तुझ से वहां बातें करूंगा और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा। परमेश्वर ने मूसा को लोगों की अगुवाई के लिए बुलवाया और परमेश्वर ही उस सेवा कार्य के लिए शक्ति भी प्रदान करेगा। ईश्वर सदैव ही ऐसा करता है, वह किसी से भी उसकी सामर्थ से बाहर काम करने की उम्मीद नहीं करता। यदि आप महसूस करते हैं कि आपके ऊपर काम का बोझ अधिक है या अधिक काम कर रहे हैं, यह सच भी हो सकता है, परंतु परमेश्वर आपसे जो काम चाहता है शायद आप उससे अधिक करना चाहते हैं। परमेश्वर अपने प्रियों से अधिक काम नहीं करवाना चाहता है। मेरे मित्र, हम गिनती 11 उसके 18 से 20 पद में आगे पढ़ते हैं, और लोगों से कह कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कह कहकर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा, हम मिस्र ही में भले थे, सो यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। फिर तुम एक दिन व दो व पांच व दस व 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे और तुमको उससे घृणा न हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। मित्रों, इस घटना के विषय परमेश्वर की आत्मा ने जो टिप्पणी की वह बहुत ही रुचिकर है। उन्होंने जो मांगा था वह परमेश्वर ने उन्हें दिया, पर उनके मध्य महामारी भी भेज दी। हम भजन संहिता 106 उसके 15 में इसे पाते हैं। परमेश्वर ने उनकी विनती सुन ली, पर उनकी आत्मा शिथिल हो गई। मेरी कल्पना में उनमें से कई इधर उधर दौड़ते हुए कहते फिरे कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई, परंतु इस कीमत का मूल्यांकन भी ध्यानपूर्वक करें। मित्रों, मैं एक जन को याद करता हूं जो कलीसिया में पदाधिकारी था, जहां मैं सेवा में जुटा हुआ था। वह मेरे पास आकर प्रार्थना के लिए विनती करने लगा। उसका धंधा मंदा पड़ गया था और वह अपने व्यापार पर आशीष चाहता था, क्योंकि उसकी सोच में यदि वह इस कठिन परिस्थिति से पार पा जाए तो बहुत धनी बन जाएगा। मैं एक नवयुवक प्रचारक था और तुरंत प्रार्थना की कि ईश्वर उसे धन दे जिससे उसका व्यापार चमक जाए। उसने भी प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और वह शीघ्र ही धनवान हो गया। यह बात उसके जीवन में सबसे भयावह सिद्ध हुई। जब तक उनके पास अधिक पैसा नहीं था, वे सुखी परिवार के रूप में जीवन बिताते थे। उसके सभी बच्चे बिगड़ गए। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली, परंतु आत्मा शिथिल पड़ गई। मेरे मित्र, परमेश्वर ने मूसा को बताया कि एक पूरे माह वे मांस खाएंगे, जब तक वह उनके नथनों से न निकले। यह इसलिए होगा कि उन्होंने परमेश्वर का अनादर किया और उसके समक्ष आंसू बहाए। हम गिनती 11 अध्याय उसके 21 और 22 पद में पढ़ते हैं। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच मैं हूं उनमें से 600,000 तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले, वा क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनको मांस मिले। मूसा परमेश्वर से पूछता है कि वह ऐसा किस प्रकार करेगा। हम गिनती 11 अध्याय उसके 23 पद में आगे पढ़ते हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने उत्तर दिया कि वह ऐसा करेगा। जब प्रभु कहे कि वह ऐसा करेगा, तब हमें उससे कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं रहता है, और उसको हमारी कैसे पूछने की जरूरत भी नहीं है। वह स्वेच्छा से सभी कार्य संपन्न करता है। हम 11 अध्याय उसके 24 और 25 पद को पढ़ते हैं। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठे करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया, और जब वह आत्मा उनमें आई तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। ध्यान दीजिए कि पहले की अपेक्षा वास्तव में अभी कुछ अधिक सामर्थ अर्थात शक्ति नहीं थी। पहले की अपेक्षा बहुत अधिक मशीनरी थी, परंतु शक्ति नहीं थी। क्योंकि वही आत्मा बट चुके थे। हम गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसके 26 से 30 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, परंतु दो मनुष्य छावनी में रह गए थे जिनमें से एक का नाम एलदाद और दूसरे का मेदाद था, उनमें भी आत्मा आई, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास न गए थे और वे छावनी ही में नबुवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि लदाद और मेदाद छावनी में नबुवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सभों में समवा देता। तब फिर मूसा इसराइल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया। यहोशू मूसा का बड़ा भक्त अर्थात विश्वस्त व्यक्ति था। यह बात अधिक आश्चर्यजनक थी कि मूसा के अंदर बिल्कुल भी जलन नहीं थी। उसको इस बात की जलन नहीं थी कि दूसरे लोग भविष्यवाणी करने में समर्थ थे। मेरा मानना है कि सेवकाई में तीन बड़े दोष अर्थात पाप हैं, आलस्य अर्थात सुस्ती, जलन और निरस्ता। हम में से अनेकों में यह दोष व्याप्त है। हम देखते हैं कि मूसा में ना तो सुस्ती और न ही निरस्ता थी। अब यहां प्रकट है कि वह जलन अर्थात ईर्ष्या भी नहीं रखता था। ईर्ष्या या जलन भयंकर होती है। मित्रों, प्रभु परमेश्वर मांस के लिए बटेरे भेजता है। हम गिनती 11 अध्याय उसके 31 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर दो हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। यहां पर ध्यान दीजिए, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें मांस खाने को देता है। वह उन्हें मन्ना के ऊपर बटेर खाने को देता है। जंगल में इससे अच्छा भोजन और क्या हो सकता है? मेरे मित्रों, इतनी अधिक संख्या में बटेरों का आना मेरी कल्पना से भी परे है। मैंने सारे दिन बटेर शिकार करने के बाद भी ऐसे कुछ भी बटेर प्राप्त नहीं किए। हो सकता है केवल दो या तीन ही आप भी पाने में सफल होंगे। हम गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसके 32 पद में पढ़ते हैं, और लोगों ने उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों को बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा, और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। मित्रों, इसका वजन लगभग 80-86 गैलन रहा होगा, और चूंकि उनके रखने के लिए कोई शीतगृह उपलब्ध न होने के कारण सबको पकाना आवश्यक था। इससे वास्तव में उनका पेटूपन भी दिखाई पड़ता है। हम गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसके 33 से 35 पद में आगे पढ़ते हैं, मांस उनके मुंह ही में था और वे उसे खाने न पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा, और उस स्थान का नाम किब्रोत तवा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। फिर इसराइली किब्रोत तवा से प्रस्थान करके हसेरोत में पहुंचे और वहीं रहे। मित्रों, हम देखते हैं कि परमेश्वर न्याय करता है और आज भी वह न्यायी है। याद कीजिए, पौलुस लिखते हैं, यदि हम अपने आप को ठीक से जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु दंड देकर हमारी ताड़ना करता है कि हम संसार के साथ दोषी न ठहराए जाएं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसके 31 और 32 पद में हम इसे पाते हैं। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 11 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 12 से आरंभ करेंगे। यहाँ पर हम पाते हैं जो मुख्य विषय हैं, मरियम और हारून का जलन, मरियम का न्याय। मित्रों, मूसा के पारिवारिक जीवन के बारे में बाइबल में हमें बहुत कम पढ़ने को मिलता है, परंतु जो कुछ भी हम जानते हैं उससे अधिक प्रसन्नता हो सकती है। इस अध्याय में घटित घटना एक पारिवारिक मामला है। यह घटना सिनै से कादेश बर्निया की यात्रा के दौरान घटी थी। इस अध्याय में ऊंचे पदों पर विद्रोह दिखाई पड़ता है जो इसराइल के अगुओं के मध्य व्याप्त था। हम देखते हैं मरियम और हारून की जलन व विद्रोह। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, मूसा ने तो एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, सो मरियम और हारून उसकी उस व्याहिता कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। मित्रों यहां पर ध्यान दीजिए कि मेरी समझ में यह उसकी पत्नी सिपोरा नहीं थी जो मिद्यान के पुरोहित की पुत्री, वह मिद्यानी भी थी। पिछली बार हम निर्गमन की पुस्तक 18 अध्याय उसके 2 पद में सिपोरा के विषय पढ़ते हैं, जब उसका पिता उसे मूसा के पास सीनै पर्वत पर लाया था। क्या वह अपने पिता के साथ घर लौट गई थी? क्या उसकी मृत्यु हो गई? यह इथोपिया या कूस वाली पत्नी कौन है? धर्मशास्त्र इस पर चुप है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उसकी दूसरी पत्नी है, परंतु विशेष बात यह है कि इस विवाह का लाभ उठाकर मरियम ने यहां मूसा के अधिकार को चुनौती दे डाली। हम गिनती 12 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। यहां पर बड़ी बहन बोल रही है, मरियम कह सकती थी कि यह लड़का मूसा अपने को क्या समझता है, क्यों मुझे यह याद दिलाता है? यह छोटा बालक सरकंडे की नाव पर पड़ा हुआ था, मैं देख रही थी, यदि उस दिन मैं इसकी रखवाली नहीं करती तो यह आज कहाँ होता, और हारून उसका बड़ा भाई महायाजक भी उससे मिल जाता है। हम गिनती 12 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मित्रों यहां पर हम पाते हैं कि मूसा और हमारे प्रभु यीशु के बारे में उन्हें सबसे नम्र लोग कहा गया है। याद रहे कि नम्रता निर्बलता नहीं है, नम्रता दीनता का अर्थ परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होकर उसकी आज्ञा का पालन करना है। हम गिनती 12 अध्याय उसके 4 पद में आगे पढ़ते हैं, सो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। यह एक पूरा पारिवारिक मामला है। हम आगे 12 अध्याय उसके 6 से 9 पद में पढ़ते हैं, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वह स्वप्न में उससे बातें करूंगा, परंतु मेरे दास मूसा ऐसा नहीं है, वह मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। मित्रों परमेश्वर कह रहा है कि वह नबियों को चुनता है, और यह कि मूसा दूसरों से महान है, मेरे घराने में सबसे विश्वास योग्य है। वह मूसा से अन्य नबियों की अपेक्षा भिन्न प्रकार से वर्ताव करेगा। वह मूसा से सीधे सीधे बात करता था। मुझे ज्ञात है और यह सच भी है, जैसा कि हम पुराने नियम में भी पढ़ते हैं, कि परमेश्वर ने मूसा से अन्य नबियों की अपेक्षा भिन्न प्रकार से व्यवहार किया है। परमेश्वर इब्राहिम को स्वप्न में दर्शन दिया, यूसुफ को स्वप्न में दर्शन दिया, परंतु मूसा से आमने सामने बातें की। मूसा सबसे अलग है। बाद में परमेश्वर यूं कहेगा, जैसा हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय उसके 18 पद में पढ़ते हैं, मैं उनके जाति भाइयों में से तेरे समान एक नबी खड़ा करूंगा, और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जो जो आज्ञाएं मैं उसे दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। मित्रों वह नबी जो मूसा के समान होगा वह प्रभु यीशु मसीह है। आइए अब हम आगे देखते हैं मरियम पर न्याय अर्थात कोढ़ की बीमारी का आना। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। मित्रों जो कुछ उन्होंने कहा वह मूर्तापूर्ण था। मरियम को कोढ़ हो गया, यह उस पर परमेश्वर का दंड था। मूसा ने प्रभु से उसके लिए प्रार्थना की। यहां पर हम देखते हैं कि वह कितना क्षमाशील और नम्र था। यद्यपि परमेश्वर ने उसे स्वस्थ कर दिया, पर 7 दिन तक उसे छावनी से बाहर रहना पड़ा, और जब तक वह बाहर थे लोग यात्रा प्रस्थान करने से वंचित रहे। उसके कारण यात्रा 1 सप्ताह के लिए टल गया। हम गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसके 15 और 16 पद में पढ़ते हैं, सो मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही और जब तक मरियम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। उसके बाद उन्होंने हसेरोत से प्रस्थान करके पारान नाम जंगल में अपने डेरे खड़े किए। मित्रों, हारून को कोढ़ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हारून परमेश्वर का नियुक्त महायाजक था। यदि वह कोढ़ी होता तो इस सेवा कार्य को नहीं करने पाता। इसराइल के पास कोई मध्यस्थ नहीं होता जो ईश्वर व इसराइल के मध्य खड़ा हो सके। सो परमेश्वर ने इस पारिवारिक मसले पर हारून को इस समय दंड देना उपयुक्त नहीं समझा। यह हारून था जिसने मूसा के साथ विनती की, हे मेरे स्वामी, हमने मूर्खता की है वरन पाप भी किया है, कृपया इस पाप का लेखा हमसे न ले। दंड का कारण जलन अर्थात ईर्ष्या थी जिसमें दोनों बराबर के भागीदारी थे, परंतु मरियम अगुआ बनी थी, उसका नाम पहले आया। पद एक के अनुसार क्रिया स्त्रीलिंग में है। वह बोली, अंग्रेजी भाषा में, हारून अगुआ नहीं बल्कि अनुयायी था। वह निर्बल व नमनशील था। उसका यह चरित्र निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय में सोने का बछड़ा बनाने में दिखाई पड़ता है। ईर्ष्या अर्थात जलन और द्वेष के पाप मरियम के मन की देन है और परमेश्वर ने सही तौर पर उसे दंड भी दिया। मेरे मित्रों, कई बार हम ऐसा ही पाप करते हैं और परमेश्वर हमें दंडित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया है ताकि हम उस दंड से बच जाएं। आज मेरे लिए मौका है, आपके लिए मौका है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दें ताकि हम ऐसे दंड से बच जाएं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसे आने की अनुमति देंगे? निर्णय आप लें और उस बड़े कोढ़ से अर्थात उस नरक में मृत्यु से बच जाएं। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद, बीते क्षणों में संग रहा है, अभी है मेरे साथ। आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद, बीते क्षणों में संग रहा है, अभी है मेरे साथ। जिसने हमारे हाथ खुद का जान दिया, जिसने हमारे हाथ खुद का जान दिया और हमारी जिंदगी को जीवन दान दिया। आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद, बीते क्षणों में संग रहा है, अभी है।